अध्याय पाँच आए 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 खंड एक। उस दिन ज्ञानवापी की आलमगिरी मस्जिद के मुअज्जिन ने भिनसहरी रात नमाजियों को जगाने के लिए मीनार पर चढ़कर अजान नहीं दी। गंगा स्नान करके नवस्थापित विश्वनाथ मंदिर में जाने वाले दर्शनार्थियों ने हर हर महादेव संभो की ध्वनि से नीचे गली नहीं गंजाई। पहरेदार ने भी जागते रहो चार बजा है चिल्लाकर मोहल्ले का फाटक खुलवाने के लिए अंतिम रौंद नहीं लगाया, परंतु मस्जिद के सामने वाले दो मंजिले मकान के बरामदे में टंगा हुआ तोता प्रतिदिन के अभ्यास वश ठीक समय पर बोल उठा, राधे श्याम राधे श्याम। पिंजरे के ठीक नीचे पड़ी तीन पैर की चरपाई पर बिछी जीर्ण कथा पर लेटे वृद्ध और अधप्राय चित्रकार रामदयाल की उगती आंखें कीर कुंजन से खुल गईं। उसने मुंह के आगे हाथ लगाकर जमुहाई ली, फिर चुटकी बजाते हुए स्वयं ही बोल उठा, राधे श्याम राधे श्याम। उसे फिर जमुहाई आई, मुंह बाए और उस पर हथेली लगाई। उसने अस्पष्ट शब्दों में कहा, आज भी अमीरन न आई तो, और जमुहाई का क्रम अटूट सा हो गया। टिकिया वाली बुढ़िया अमीरन का गत तीन दिन से पता न था, इसलिए उसके ग्राहक घबरा उठे। जाड़ा हो गर्मी हो बरसात हो, टिकिया वाली अमीरन बिना नागा अपने गिने चुने ग्राहकों के लिए छोटी सी टोकरियों में टिकिया और अमरी तंबाकू लेकर नगर की प्रदक्षिणा करने सूर्य के साथ ही निकल पड़ती। उसकी ताजी कुरकुराती टिकियों और खुशबूदार नशीली तंबाकू के चाहक हाथ में चिलम और टिकिया धराने के लिए में रखा अंगारा फूक से जिलाते हुए टिकिया वाली की प्रतीक्षा में अपने घरों से निकल आए रहते। टिकिया वाली भी सुंगनी रंग का चूड़ीदार पाजामा और हरे रंग का कुर्ता पहने, सिर पर गेरुए रंग की चादर डाले, एक हाथ से लठिया टेकते और दूसरे हाथ से कमर के सहारे टोकरी संभाले अपने जर्जर जूतियां चटकाती आती आतुर ग्राहक के सामने पहुंच हाफते हुए लाठी पर टेक देकर खड़ी हो जाती। चबूतरे या सीढ़ी पर टोकरी रख देती और कानों में पड़ी चांदी की छोटी छोटी आध दर्जन बालियों में प्रभाती पवन के कारण उलझे श्वेत केशों को चांदी के ही छल्लों से गुथी कंपित और क्षीण अंगुलियों से सवारती हुई क्षण भर दम लेती। फिर सिल पर कूच कर मुंह में जमाया जर्दापान जीभ से गाल की ओर हटा देती, खखार कर गला साफ करने का प्रयत्न करती और हंसकर चुटकी बजाते हुए फूटे परंतु सधे गले से गा उठती, पिया आवन की भई बेरियां तरबजवा लागी रहूं। तत्पश्चात कोड़ी दो कौड़ी की टिकिया बेच आगे बढ़ जाती। उसकी इन मुद्राओं पर उसके ग्राहक मुस्कुरा देते। कभी कभी कोई उसी जैसा बुढ़ा ग्राहक यह भी कह बैठता, बीबी अब तो तुम्हारी वह उम्र नहीं रही, नहीं तो लोगों को कुछ और ही शक हो जाता। डांटने का अभिनय करती हुई अमीरन जवाब देती, मियां बुढ़े हुए लेकिन अकल न आई। सच तो यह है कि जिनकी शक के लायक उम्र नहीं रही उन्हीं पर सबसे ज्यादा शक करना चाहिए। इस पर कोई और बोल उठता, यह कानून बनाओगी तो तुम भी शक से रिहाई न पा सकोगी। वह उसे भी चमकाती हुई कहती, हमारी फिक्र न करो, हम औरतों को शक का रास्ता बचा कर चलने का अभ्यास होता है। और इस जवाब के बाद सिवा झेप कर हंसने के बाद आगे बढ़ाने का रास्ता न रह जाता। उसके चले जाने के बाद वहाँ एकत्र लोगों में नी मुछिए कहते बेहया है, अधेड़ कहते बेलौस है, बुढ़े कहते जोगिन है और स्वयं अमीरन पूछने पर कहती, मैं क्या थी यह भूले जुगो बीत गए, अभी आगे चलकर क्या हो जाऊंगी यह अल्लाह ही जानता है, अलबत्ता मैं इतना ही जानती हूँ कि मैं इस वक्त क्या हूँ। इस पर यदि कोई कहता कि अच्छा यही बताओ कि तुम इस वक्त क्या हो, तो उसके मुखमंडल पर विचित्र गंभीरता छा जाती। वह धीरे धीरे कहती, मैं घर घर अलक जगाने वाली भैरवी हूँ। खंड दो। बरामदे से संलग्न कोठरी में चित्रकार की पत्नी कृष्णप्रिया भी जाग चुकी थी और बिछौने पर लेटे ही लेटे गुनगुना रही थी। जागिए ब्रजराज कुंवर पंछी सब बोले। सवेरा हो चुका था, रामदयाल को भ्रम हुआ कि कोई उसका दरवाजा खटखटा रहा है। उसने अपनी पत्नी को पुकारा, अजी सुनती हो, उठो दरवाजा खोलो, शायद अमीरन आ गई। तुम तो जैसे रात भर अमीरन का ही सपना देखते रहे हो। कहते कहते कृष्णप्रिया उठी और बरामदे में आकर गली के नीचे झांका। किसी को न देख उसने कहा, क्या अमीरन को भी अपनी जान भारी पड़ी है कि वह इस खून खराबी में घर से बाहर निकले। वही तो, बूढ़े चित्रकार ने कहा, परंतु क्या करूं, अमल बुरी चीज है। देखो कोने अतरे में अगर थोड़ी बहुत तम्बाकू पड़ी हो तो मुझे दे दो। जो कुछ था सब समाप्त हो गया, अब तुम ही खोजो, उसने कहा और फिर भुनभुनाने लगी। दंगे का दिन है, अड़ोसी पड़ोसी भी भाग गए हैं, नहीं तो उन्हीं से सवेरे सवेरे भीख मांगती। असहाय रामदयाल ने पत्नी के वचन सुने, यह जानते हुए भी कि अभिशिप्त वस्तु मिलने वाली नहीं है, उसने एक कोने में हाथ बड़ा टटोलना आरंभ किया। वह जो कुछ खोज रहा था वह तो हाथ ना लगा, परंतु उसका हाथ अपनी ही बनाई हुई एक तस्वीर पर पड़ गया। चित्र पर हाथ पड़ते ही उसकी हथेली एक बार पुनः वैसे ही जलने लगी जैसे 27 वर्ष पूर्व यही चित्र चुराने के अभियोग में अग्नि परीक्षा के अवसर पर जलते हुए लौह गोलक से वह जली थी। उसने तत्काल चित्र पर से हाथ खींच लिया, परंतु बुझी आग धधक चुकी थी। उसने स्मृति के धुएं में स्पष्ट देखा, जमुना का किनारा है और किनारे काली मिट्टी के टीले पर फूस से छाई हुई एक झोपड़ी, झोपड़ी की चूना पुती, भीत पर कोयले के छोटे से टुकड़े से 12-13 वर्ष का एक बालक एक बालिका का चित्र बनाने के प्रयत्न में तल्लीन है। लड़का गत 12 घंटे से भूखा है, परंतु चित्र रचना के आगे उसे सुविधा भी भूल गई। उसकी पीठ पर तीखी धूप पड़ रही है, परंतु उसे इसकी चिंता नहीं। उसी समय उसी की तरह धुन की पकी 7-8 वर्ष की एक लड़की एक हाथ में मट्टे से भरा लोटा, दूसरे में पते में लपेटा नमक मिर्च और मोटी मोटी दो रोटियां लिए बालू में झुलसते पैरों की ओर से सर्वथा लापरवाह जल्दी जल्दी वहां आई। लड़के के पीछे खड़ी होकर आदेश के स्वर में उसने कहा, हंस पहले इसे खा ले, चित्र पीछे लिखना। लड़का चौंक पड़ा, लड़की को देखकर बोला, काका देख लेंगे तो बिना पीटे ना छोड़ेंगे। किकनी खिलखिलाकर हंसी, उसने कहा, काका तो खा पी कर चौपाल में पड़े नागलीला बाँच रहे हैं, मैं देख कर तब आई हूँ। वृथा परिश्रम काहे करते हो, तुमसे मेरी तस्वीर न बन सकेगी। और उसने लोटा तथा पत्ते सहित रोटी उसके सामने रख दी। पुनः तत्काल ही प्रश्न किया, तुम काका से इतना डरते क्यों हो?
बप्पा कह गए हैं कि गरीबों को अमीर से डरना चाहिए, हंस ने कहा। किकिनी फिर हंसी, उसने पूछा, इसी से तुम मेरे घर कभी नहीं आते? हाँ, से झुकाए हंस ने कहा और सहसा अपनी चमकीली आंखें किकिनी के चेहरे पर जमाकर बोला, मैं तुम्हारी तस्वीर जरूर बनाऊंगा। अच्छा पहले खा लो, किकिनी बोली। हंस खाने लगा। किकिनी ने वार्ता आगे बढ़ाई, अच्छा जब मेरा ब्याह हो जाएगा तो मैं अपने घर जाऊंगी, तब तुम वहाँ आना, आओगे ना? हंस ने कहा, हाँ। किकनी कहती गई, तुम्हारे बप्पा के मर जाने के बाद यहाँ तो अब तुम्हारा कोई और रहा नहीं, वहाँ तुम्हें बड़े सुख से रखूंगी। ऐसे ही नदी किनारे कोठेदार घर होगा, सामने अमराई होगी, पीछे फूलों का बगीचा होगा, वहाँ मैं दौड़ दौड़ कर तितली पकड़ूंगी, तुम बैठ कर मेरी तस्वीर बनाना। अच्छा पप्पा ने तुम्हें मेरे यहाँ आने से मना क्यों कर दिया? किकनी की प्रत्येक बात पर हंस हाँ हाँ करता जाता था। इस प्रश्न पर भी उसे यही करना पड़ा, कारण उसे ज्ञात न था कि उसके कथावाचक पिता ने यह जानकर कि मैं स्वयं पुत्र का नाम परम हंस रख देने के सिवा उसे और कुछ न दे जा सकूंगा, वंश गौरव के बल पर नंबरदार से उसकी बेटी मांगी थी और धनमत नंबरदार ने अपमान पूर्वक प्रस्ताव ठुकरा दिया था। उसके घर से लौटकर आत्मग्लानी में गले पिता भगवती ने स्वप्न में ही नंबरदार की दहली ना लांघने का आदेश पुत्र को दे दिया। हंस का भोजन समाप्त हो गया, वह नदी पर जाकर पानी पीने और लोटा मांजने के लिए उठ खड़ा हुआ, किंतु किकनी ने पहले ही लोटा उठा लिया और वह नदी की ओर दौड़ चली। उसने बालू से रगड़ कर लोटा मांजा, पानी भरा और लौटने के लिए घूमी की पास ही खड़ा एक मात्र नाव पर से एक लंबा चौड़ा बलवान व्यक्ति किनारे कूदा। उसने एक हाथ से किकनी का मुंह बंद कर दिया, दूसरा हाथ उसकी कमर में डाल उसे उठाकर वह नाव में चला गया। किकनी के यहाँ से छूटा लोटा लुढ़क कर पानी में जा गिरा। 5-7 मिनट बाद नाव खुल गई। हंस टीले पर खड़ा किकनी हरर देखता रहा। सहसा उसे अपने पीछे कुछ लोगों के आने की आहट लगी। उसने सुना कि नंबरदार अपने पियादे से कह रहा है, रामदयाल पैर पर ऐसी लाठी मारना कि सदा के लिए लंगड़ा हो जाए, बालक समझकर इस तरह मत दे जाना। रामदयाल की क्रूरता से परिचित हंस जल्दी से पार्श्ववर्ती पलाश वन में भागा। भागते भागते कई कोस निकल गया, थककर एक स्थान पर गिर पड़ा। घंटे भर पड़े रहने के बाद एक पथिक ने उसे उठाकर उससे उसका नाम पूछा। नशे में चूर आदमी की तरह हंस ने कहा, मेरा नाम रामदयाल है। उसके बाद उस गांव में किकनी का शब्द फिर कभी न सुनाई पड़ा। हंस तो सदा के लिए उड़ ही गया। खंड 3। कोने में आंख फाड़ फाड़ कर क्या देख रहे हो, चित्रकार की पत्नी ने पूछा। कुछ नहीं, अपनी भावना में खोए हुए, चित्रकार ने उत्तर दिया, परंतु उसने अपनी आंखें कोने की ओर से नहीं हटाई। उसकी स्मृतियां उसके मानस चक्षु के सामने विचित्र विचित्र चित्र प्रस्तुत कर रही थी और जन्मजात चित्रकार उन चित्रों की ये खूबियां बारीकी से निहार रहा था। नवाब अस्करी मिर्जा का दरबार नित्य की तरह गुलो बुलबुलों से महक चहक रहा। अस्करी मिर्जा एक मन एक मसनद पर टेक दिए अधलेटे से थे। उनके गोरे गोरे हाथ पांवों में कलापूर्ण ढंग से मेहंदी सजाई हुई थी। छल्लेदार जुल्फे मसनद पर बिखरी पड़ी थी। सामने अफीम की पीनक में झूमते बैठते ख्वाजा फसीह एक शेर का मतला माजते जा रहे थे। उन्हीं के पार्श्व में मिर्जई पहने और सिर पर भारी पगड़ी बांधे दिव्य कवि डटे थे। उन्होंने हाथ बांध कर कहा, खुदा बंद श्रीमती नई बेगम साहिबा के की प्रशंसा में मैंने एक सवैया रची, मर्जी होए तो अरज करूं, अभी नहीं, यह मुसव्विर रामदयाल है, इन्हें मैंने दिल्ली से बुलाया है, मिर्जा ने कहा और चित्रकार से पूछा, सफर में तकलीफ तो नहीं हुई। यथोचित उत्तर प्रत्युत्तर के बाद नवाब ने कहा, मैंने अपनी नई बेगम की तस्वीर बनाने के लिए आपको बुलाया है, आपने भी शायद उनका नाम सुना है, बनारस में क्या दूर दूर तक उनके नाचने गाने की धूम है। नवाब अपनी बात समाप्त भी ना कर पाए थे कि एक मुसाहिब उठे और बोले, तलवार की धार पर वह नाचे, बतासे पर फिरकी की तरह वह घूमे, सिर पर पानी भरी थाली रख थमा चौकड़ी मचाए, और क्या मजाल की एक बूंद भी छलके। अच्छा बकिए मत, नवाब ने मुसाहिब को डांटा और खड़े होकर मुसव्विर से कहा, आप मेरे साथ आइए। मुसव्विर और नवाब साथ साथ जनाने महल में जा रहे थे और नवाब कह रहे थे, बेगम को आपकी कलम बहुत पसंद है, उन्हीं की जिद थी कि तस्वीर बनवाऊंगी तो उस्ताद रामदयाल से ही। एक बाहरी आदमी के साथ नवाब को महल के भीतर आते देख बादियां आश्चर्यचकित हो गईं। नवाब ने एक दासी से कहा, बेगम से कह दो कि उस्ताद रामदयाल आए हैं, गुनियों से क्या पर्दा। बेगम ने सुना तो दौड़ी आई, परंतु चित्रकार को देखकर स्तब्ध हो गईं। उनके मुंह से निकला हंस। चित्रकार की भी वही दशा थी, उसके मुंह से भी निकल पड़ा किकनी। दोनों एक दूसरे की ओर एक टक देखते रहे। नवाब ने पूछा, क्या आप लोग एक दूसरे को पहले से पहचानते हैं। रामदयाल चुप रहा, हाँ भी नहीं, नहीं भी। बेगम ने प्रकृतिस्थ होकर कहा, हाँ यो कि हम दोनों एक बार पहले मिल चुके हैं, नहीं इसलिए कि मैं यह नहीं जान पाई थी कि आप ही उस्ताद रामदयाल हैं। हंस किकनी क्या, एक रागनी का नाम है। हंस बेगम ने कहा, हंसकर बेगम ने कहा, उसी से तो हम दोनों ने एक ही बार मुलाकात रहने पर एक दूसरे को इतनी जल्दी पहचान लिया। मैंने हंस किकनी रागनी गाई थी। उन्होंने मजाक में कहा था कि हंस के पैर में किकनी बांध दी जाए तो वह निश्चय शिकारी के तीर का शिकार बन जाएगी। ओह, नवाब ने कहा। ओह, चित्रकार के मुंह से निकला। उसकी पत्नी जोर से उसका कंधा हिला रही थी। ओह, मस्जिद के दक्षिण वाला हनुमान जी का मंदिर मुसलमान तोड़ रहे हैं, उसके बाद वे हम लोगों पर टूट पड़ेंगे। मैं पहले ही कहती थी कि घर छोड़कर कहीं हट चलो, इतना हल्ला क्यों करती हो। चित्रकार ने झल्ला कर कहा, आज 27 वर्ष से मैं बाहर नहीं निकला, अब आज बाहर निकल कर दुनिया को क्या मुँह दिखाऊंगा। खंड 4। गोरो और तिलंगों को लेकर जनरल साहब आ गए, अब जान बच जाएगी, शांति की सांस लेकर चित्रकार ने पत्नी से कहा। चित्रकार की पत्नी ने जिसे जनरल साहब समझा वह वास्तव में बर्ड थे। जिला मजिस्ट्रेट मिस्टर बर्ड ने आते ही दंगाइयों को फुर्र से उड़ा दिया। इतने से उसकी निगाह ऊपर बरामदे में खड़े वृद्ध दंपति की ओर गई। उसने समझा कि ये असहायता के कारण नहीं भाग सके, उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँचा देना लेना उसने अपना कर्तव्य समझा। बरामदे के नीचे आकर उसने रामदयाल को कुछ दिन के लिए किसी सुरक्षित स्थान में चले जाने के लिए समझाना आरंभ किया, परंतु रामदयाल के पास एक ही जवाब था, साहब 27 बरस में मैं एक बार भी इस घर से बाहर नहीं निकला, इस उम्र में मेरी प्रतिज्ञा भंग न कराइए। लाचार होकर बर्ड चला गया। चित्रकार की पत्नी अपने पति पर पुनः हंसने लगी, क्यों नहीं चले गए, साहब इतना समझा रहा था, बेमौत मरने से क्या लाभ। बेमौत कोई नहीं मरता, चित्रकार ने झल्ला कर उत्तर दिया, बेमौत मरना होता तो मैं मिर्जा अस्करी के ही हाथों कभी का मर चुका होता, 27 बरस से चोरी के कलंक का बोझ न ढोता। परंतु तुमने तो तस्वीर नहीं चुराई थी, बहुत दिन तक मैं भी यही समझता था कि मैंने तस्वीर नहीं चुराई, परंतु इधर विचार करने पर यही प्रतीत होता है कि जो कुछ मैंने किया वह मेरी अधमता ही थी। मुझे तो तुमने कभी नहीं कुछ बताया, कोई यज्ञ तो नहीं किया था जो तुम्हें कहता, वह सच सोचने से भी दुख होता है। फिर भी चुप रहो, रामदयाल ने पत्नी को चुप करा दिया, परंतु स्वयं उसका मन चुप न रह सका, वह उससे बार बार चुपके चुपके कहने लगा, क्या क्यों नहीं देते कि तंबाकू में अफीम की पुट देने वाली यह टिकिया वाली अमीरन तेरी बाल संगिनी किंकिनी है, यह किसी समय काशी की प्रसिद्ध वेश्या और अमीर जान थी, अपने रूप और गुण के बल पर वह नवाब अस्करी मिर्जा की बेगम भी हो गई थी, परंतु पूस की एक अंधेरी रात में जबकि बिजली चमक रही थी और मूसलाधार पानी बरस रहा था, वह झाड़ मार कर नवाब के महल से निकाल दी गई थी। उसका अपराध यही था कि उसने बचपन के एक साथी को पहचान लिया था, उसकी कला पर मुग्ध हो गई थी और पति की वस्तु होते हुए भी उसका बनाया चित्र अपना समझकर तुझे ही पुरस्कार में दे दिया था, तूने उसे स्वीकार कर किकिनी का दूसरी बार सर्वनाश किया, क्योंकि नवाब ने यह सूचना पाकर भरी महफिल में कहा था, बेगम बनने पर भी बाजारी बू नहीं गई, और उन्होंने ऋषेश्वर भट्ट को चित्र का स्वामी बनाकर तुझ पर चोरी का अभियोग लगाया, तेरे दम्भ ने तुझे सत्य का दर्शन न होने दिया, तूने चोरी करना अस्वीकार किया, तेरा हाथ जला, तू सदा के लिए घर में मुँह छिपा कर बैठा रहा, कह दे अपनी पत्नी से यह सब कह दे, तेरा भी बोझ उतर जाए। रामदयाल पत्नी की तरह मन को ना डांट सका, उल्टे स्वयं अपराधी की तरह उसने बिना बोले ही कहा, यह जानता तो दिल्ली से ना आता। मन ने पुनः टोका, यहाँ आने में तूने कोई भूल नहीं की, भूल की है तूने यहाँ आकर, जब तू चित्र बनाकर नवाब के पास गया तो उसके यह कहने पर कि बेगम का रंग बहुत उजला है, आपने यह रंग क्यों दिया, तू चुप क्यों नहीं रह गया, और यदि बोला भी तो यह क्यों कह बैठा कि रंग सफेद नहीं है किंतु इस भूरे और फीके केसरिया रंग के साथ आकाशी नीले रंग का जो सम्मिश्रण है उसकी शोभा का आनंद रसिक वैष्णव ही जानते हैं, यह तेरी पहली भूल थी। दूसरी भूल तूने अमीरन से तस्वीर लेते समय की, उससे वार्ता करने में तूने ख्याल न किया कि दरवाजे से कान लगाए नवाब की बड़ी बीबी मुल्तानी बेगम एक एक शब्द सुन रही है। चित्रकार को वे बातें स्मरण हो आई, वह बेगम के पास रात्रि के समय प्रथम बार एकांत में आया था, पूर्व व्यवस्था के अनुसार बेगम उसकी प्रतीक्षा कर रही थी, उसने उसे देखते ही कहा था, तुमने तो वास्तव में बड़ी उन्नति की है हंस, याद है तुमने मुझे इसका वचन दिया था, कहते कहते उसका स्वर आर्द हो उठा था, वह गदगद गले से बोली, देखा नारी का प्रेम पुरुष को उन्नत बनाता है परंतु पुरुष का प्रेम नारी को गिराता है। किकिनी अपूर्व रूपशालिनी थी, वह आदर्श प्रतिमा थी जिस पर कलाकार जान देते थे, 100 दीपकों वाली झाड़ के उज्जवल प्रकाश में हंस किकिनी को एक टक देख रहा था, उसने उत्तर नहीं दिया, स्वयं एक कदम आगे बढ़ा, 2 कदम पीछे हटते हुए किकिनी बोली, आगे मत आओ, पतन की ओर न बढ़ो, मैं लाल लाल आँखों के पहरे में रहकर अस्पृश्य हो गई हूँ। इस बार हंस का मुंह खुला, वह बोला, ललाई की तलछट को हरियाली कहते हैं। वह पुनः आगे बढ़ा, बाहर से किसी के ठठहाकर हंसने की आवाज आई। किकिनी ने तस्वीर उठाकर हंस के हाथों में देते हुए कहा, इसे लो और जल्दी चले जाओ। हंस ने चित्र लिया और तत्काल ही चोर दरवाजे में अदृश्य हो गया। सोचते सोचते रामदयाल के समक्ष मुल्तानी का चित्र खड़ा हो गया। मुल्तानी के शरीर में सौंदर्य के अनेक उपादान थे, परंतु भेद वृद्धि ने उन्हें ढक रखा था। नाक के दोनों ओर स्थूल कपोल और अधरोष्ठ तथा चिबुक के नीचे एकत्र वशा का स्मरण आते ही रामदयाल ने घृणा से मुंह बिचका लिया और तत्काल ही अत्यंत आवेश में अपनी अंगुलियों के बड़े हुए नखों पर अंगूठा फेर कर उनकी प्रखरता परखते हुए वह जोर से बोल उठा, यदि इस समय मुल्तानी सामने होती तो अंगुलियों उसकी आंखें निकाल लेता और नहीं तो मुंह का मांस नोच डालता। वैष्णव कलाकार ही मुख मुद्रा अत्यंत हिंस हो उठी। पत्नी ने 27 वर्ष बाद जीवन में दूसरी बार पति का यह रूप देखा। वह डर गई। किसी ने नीचे दरवाजा खटखटाते हुए कहा, दरवाजा खोलो, मैं मुल्तानी हूँ। खंड 5। मुल्तानी रामदयाल के सामने पहुंची। रामदयाल ने देखा कि सामने 11-12 वर्ष की एक मैली सी लड़की छीट का गंदा कुर्ता पजामा पहने रटे हुए तोते की तरह कहती जा रही थी, बुआ अमीरन बहुत बीमार है। उन्होंने कहा है कि मैं अब कुछ दम की ही मेहमान हूँ, क्या आप मेरे घर कभी नहीं आएंगेगा? बुआ ने यह भी कहा है कि समझा कर कह देना कि मैं अपने घर की बात कर रही हूँ, उन घरों की नहीं जहाँ से कोई मुझे भगा या उठा ले जा सकता हो। तुम बड़ी बहादुर हो मुल्तानी, दंगे में भी घर से निकल पड़ी हो। इसमें बहादुरी क्या है? मुल्तानी ने कहा, सड़क पर तो लोग चल फिर रहे हैं, अलबत्ता गली कूचों में कहीं कहीं लड़ाई हो रही है, मगर मेरा नाम मुल्तानी नहीं रखिया है, मैं नन्हे खां की लड़की हूँ। तुमने तो मुल्तानी बताया था। ओहो, वह तो अमीरन बुआ सभी पाजी लड़कियों और औरतों को मुल्तानी ही पुकारती हैं। मेरी सराफतों से उन्होंने मेरा नाम मुल्तानी रख दिया, रकिया उर्फ मुल्तानी ने कहा। रामदयाल चुपचाप उठ खड़ा हुआ। उसने एक चिथड़ा सा कंधे पर डाल लिया और टटोल कर लकड़ी उठा ली, फिर रकिया से कहा, चल। कृष्ण प्रिया चुपचाप बैठी सब देख सुन रही थी। अब उससे ना रहा गया। उसने उठकर पति का हाथ पकड़ा, फिर पूछा, कहाँ जा रहे हो? अमीरन के यहाँ, भर्राए स्वर में रामदयाल ने कहा। कृष्ण प्रिया ने क्षण भर पति का मुख ध्यान से देख फिर हाथ छोड़ दिया। रामदयाल ने एक हाथ से रकिया का कंधा पकड़ा, दूसरे से लाठी ठक ठकाता हुआ घर से निकल गया। वह पग पग पर ठोकर खाता था, गिरते गिरते बचता था, फिर भी आतुरता पूर्वक चलता जा रहा था। ससा दीन दीन के नारों से एक बार उसके कान सुन्न से हो गए। रकिया सक पकाकर रामदयाल से सट गई। इतने में ही 10-15 आदमियों ने दोनों को घेर लिया। रामदयाल ने मन ही मन कहा, अब सचमुच मौत आ गई। आध घंटा बाद आती तो प्रसन्नता से स्वागत करता। मुसलमान की लड़की भगाए लिए जा रहा है, देखता क्या है, मारो, एक दंगई ने कहा। दूसरे दंगई ने लड़की का हाथ पकड़कर उसे खींच लिया। उसके सहारे खड़ा चित्र कार मुंह के बल जमीन पर आ रहा। नाक और बचे खुचे दांत टूट गए। चेहरा रक्त रंजित हो गया। सहसा दंगाइयों में भगदड़ मच गई। एक तेजस्वी तरुण ने तलवार से उन पर आक्रमण कर दिया था। क्षण भर तो दंगई ठहरे, परंतु तरुण की सहायतार्थ बरकंदाजों की पलटन आती देख वे भाग खड़े हुए। तरुण ने आहत चित्रकार से कहा, जहाँ कहो तुम्हें भेज दूँ, मैं काशी नरेश का भाई प्रसिद्ध नारायण हूँ। भगवान आपका भला करे। पुनः पार्श्व में आकर खड़ी रकिया के कंधे पर हाथ रखते हुए कलाकार ने कहा, मैं तो इस लड़की के साथ जाऊंगा। तरुण चला गया। वे दोनों भी अपनी राह चले। सहसा एक झोपड़ी की चौखट पर चित्रकार को खड़ा करती रकिया ने कहा, आप इसमें जाइए, बगल में मेरा घर है, मैं अपने घर जाती हूँ। रकिया अपने घर चली गई। दुविधा में पड़ा रामदयाल चौखट पर खड़ा रहा। उसने सुना कि भीतर अमीरन वायु के प्रकोप में गाने का प्रयत्न कर रही है, मोरे मंदिर अजहु न आए। अमीरन के स्वर में तेज का प्रकाश नहीं रह गया था, उसकी जगह करुणा की आदरता आ गई थी। रामदयाल सुनने लगा, मैं का हाय करूं मोरी आली, किन सौतिन बिलमाए। उसने आलाप लेने का प्रयत्न किया, गिटकिरी भरना चाहा, परंतु भीषण हिचकी आई, केवल इतना ही सुन पड़ा, आए आए आए। रामदयाल अब न रुक सका, वह लपक कर भीतर घुसा। उसने पुकारा किकनी, परंतु किकनी मौन पड़ गई थी। उसकी आंखें खुली थी और उसके मुख पर विजय गर्व की मुस्कान थी। कोठरी में स्वर गूंज रहा था, आए आए आए।